केबिन के भीतर एक पल तक सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बोलती नहीं लेकिन महसूस होती है। एसी की ठंडी हवा हल्की सी सरसराहट के साथ कांच की दीवारों से टकरा रही थी और कागजों के कोनों को माइक्रो सा हिला रही थी। मगर उस ठंडक के बीच कुछ और भी था, एक घरेलू सी गर्मी जो तापमान से नहीं मौजूदगी से आती है। श्यामली दरवाजे के भीतर दो कदम चलकर रुकी। उसने आज हल्के आसमानी रंग की नेट की साड़ी पहनी थी, कोई भारी बॉर्डर नहीं, बस किनारे पर पतली सी सफेद धार। साड़ी का पल्लू उसके कंधे से सीधा गिरता हुआ छाती के पास हल्का सा मुड़ रहा था। ब्लाउज पूरी बाह का था, सादा, पीछे गोल कट जिसमें सिर्फ एक डोरी बंधी थी। उसके बाल आज पूरी तरह नहीं बंधे थे, एक ढीली सी चोटी पीठ पर थी, लेकिन माथे के पास से दो पतली लटें खुद ही गालों तक उतर आई थीं। पैरों में जूती थी जो चलते वक्त हल्की सी आवाज करती, जैसे बता रही हो कि कोई आया है, पर जोर से नहीं। विश्वनाथ अपनी कुर्सी पर बैठा था, पेट सीधी, टेबल पर फाइलें सजी हुईं। उसकी नज़र पहले फाइलों से हटकर लंच बॉक्स पर गई, वही स्टील का सादा डिब्बा, बिना किसी डिजाइन के, बिना किसी चमक के, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे वो देखे बिना भी पहचान सकता था। श्यामली दोनों हाथों से लंच बॉक्स थामे खड़ी थी, उंगलियां ढक्कन के किनारे हल्का दबाव बनाए हुए। उसके कंधे थोड़े सिमटे थे, जैसे वो अपनी जगह कम से कम लेना चाहती हो। मैं, उसकी आवाज कांच के कमरे में थोड़ी देर से गूंजी, सोचा आप लंच नहीं करेंगे। हर शब्द जैसे पूछ कर बाहर आ रहा हो। विश्वनाथ कुर्सी से थोड़ा आगे झुका, कुर्सी की हल्की सी चरमराहट हुई। तुमने क्यों तकलीफ की? उसका स्वर अब भी रोबदार था, लेकिन उस रोब के नीचे कुछ ढीला सा खुला हुआ। श्यामली ने नज़र झुका ली, उसके हाथ लंच बॉक्स पर और कस गए। कोई तकलीफ नहीं थी, वो बोली, आपने नाश्ता नहीं किया, सोचा दे आती हूँ। उसने लंच बॉक्स टेबल पर रखा, रखते वक्त उसकी कलाई हल्का सा मुड़ी और साड़ी का पल्लू आगे खिसक कर एक पल को उसकी बाँह से लिपट गया। उंगलियां ढक्कन पर रुक गईं, बस एक पल, जैसे खोलते ही कुछ और भी खुल जाएगा। विश्वनाथ ने खुद आगे बढ़कर ढक्कन हटाया, क्लिक, और उसी पल उसकी सांस हल्की सी रुक गई। दाल की महक ना ज्यादा मसालेदार थी ना फीकी, ऐसी जो पेट से पहले यादों तक पहुंचती है, साथ में सूखी आलू की सब्जी, जीरा, हल्दी और घर की सादगी। दो रोटियां, न बहुत मोटी न बहुत पतली, जैसी वो हमेशा चाहता था पर कभी कह नहीं पाया। ये, उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, ये तो वही है। श्यामली ने खीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसकी आवाज अब भी धीमी थी, आज सुबह ही बनाया था। उसके हाथ अब आपस में फंस गए थे, अंगूठे एक दूसरे को हल्का हल्का मसल रहे थे। डर था कहीं उसे लगे कि उसने हद पार कर दी। विश्वनाथ कुर्सी से उठा। बैठो, उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। श्यामली एक पल को हिचकिचाई, उसके पैर आगे बढ़े फिर रुके, फिर धीरे धीरे वो बैठ गई, पेट सीधी, हाथ गोद में। साड़ी का पल्लू उसने अपने आप और ठीक कर लिया। विश्वनाथ ने पहला निवाला लिया और बिना कुछ कहे एक पल के लिए आंखें मूंद ली। उसे हवेली का डाइनिंग हॉल याद आ गया, सुबह की धूप, गरम पराठे और दरवाजे पर ठहरी हुई एक नज़र। तुम्हारे हाथ का स्वाद, वो बोलते बोलते रुका, फिर संभल कर बोला, पहचान में आता है। श्यामली ने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे छाती पर रखा कोई बोझ थोड़ा हल्का हुआ हो। मैं रोज वही बनाती हूँ, वो बोली, आपको यही पसंद है? आदत हो गई है, विश्वनाथ ने कहा, और आदत आसानी से नहीं बदलती। उसने दूसरा निवाला लिया और धीरे धीरे खाता रहा, जैसे वक्त को खींच रहा हो। बीच बीच में बस खाने की बातें होती रहीं। नमक ठीक है? श्यामली ने पूछा। हाँ ठीक है, आज दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई थी, ऐसी ही अच्छी लगती है। कोई और बात नहीं, न रिश्तों की न सवालों की, बस खाना और उसके साथ एक चुपसी समझ। आखिरी कौर के बाद पानी का घूंट लिया गया, लंच बॉक्स धीरे से बंद हुआ। बहुत दिनों बाद, विश्वनाथ बोला, बाहर बैठकर घर जैसा खाया है। श्यामली की आंखों में हल्की सी चमक आई, लेकिन वो जल्दी से नजर झुका गई। आपको अच्छा लगा? उसने कहा, बस वही काफी है। वो उठी, साड़ी का पल्लू कंधे पर फिर से ठीक किया और लंच बॉक्स उठाया। दरवाजे तक जाते हुए उसने एक बार पीछे देखा। विश्वनाथ फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था, रोबदार, व्यस्त, लेकिन टेबल पर रखा खाली लंच बॉक्स कुछ और कह रहा था। श्यामली बिना कुछ कहे केबिन से बाहर निकल गई और विश्वनाथ कांच की दीवारों के बीच बैठा रहा, घर के स्वाद के साथ एक ऐसी फिक्र लिए जो अब ऑफिस तक आ गई थी। श्यामली जब ऑटो में बैठकर हवेली की ओर जा रही थी तो शहर की भागती हुई सड़कें भी उसे आज धीमी लग रही थीं। ऑटो की सीट पर बैठे बैठे उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन अजीब सी हल्केपन से भरा हुआ। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। बालों की कुछ लटें बार बार आंखों के सामने आ जाती और हर झटके के साथ उसे कुछ पल पहले का वही केबिन याद आ जाता। वही खामोशी, वही सादा सा लंच बॉक्स और विश्वनाथ की आंखों में ठहरा हुआ एक अनकहा सुकून। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये एहसास किस नाम का है। ना खुशी पूरी तरह थी, ना बेचैनी, बस एक ठहराव था जो भीतर कहीं गहराई में जाकर बैठ गया था। वो बार बार उन्हीं पलों को याद कर रही थी, कैसे उसने पहला निवाला लिया था, कैसे उसकी आवाज में सख्ती के नीचे नरमी झलक आई थी। श्यामली ने हल्के से आंखें मूंद ली, जैसे उन यादों को कसकर थाम लेना चाहती हो। फिर तुरंत ही उसने खुद को टोक दिया, ये सब सोचने की क्या जरूरत है। लेकिन मन था कि मान ही नहीं रहा था। ऑटो के इंजन की आवाज के बीच भी उसे वही स्वाद, वही महक, वही पल साफ साफ महसूस हो रहा था। हवेली पहुंचते ही वो सीधे अपने कमरे में चली गई। साड़ी का पल्लू उतारते हुए भी उसकी उंगलियां धीमी थीं, जैसे मन कहीं और अटका हो। उसने खिड़की खोली और बाहर देखने लगी। चारों तरफ हरियाली फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियां हवा में हिल रही थी, धूप छन छन कर जमीन पर उतर रही थी। उस सन्नाटे में भी उसे भीतर एक आवाज सुनाई दे रही थी, विश्वनाथ का ख्याल। ना चाहते हुए भी उसका नाम, उसका चेहरा, उसकी मौजूदगी उसके मन में उभर आती। श्यामली खिड़की के पास खड़ी रही देर तक, ये सोचते हुए कि जो सुकून आज उसने महसूस किया है वो आखिर आया कहां से और क्यों।